अगर सेम थिंग इज बाबर आजम,
बाबर आजम इस दफा एशिया कप में कुछ इतना अच्छा नहीं दिखा सके। हाँ, कुछ सही से,
मगर बाबर आजम के पास अभी भी चांस है, कोहली के पास नहीं
है। हाँ,
कोहली के पास,
कोहली के पास नहीं, कोहली के पास नहीं, और मैचेस आएंगे।
दे आर प्लेइंग अगेंस्ट अफगानिस्तान।
यस दैट्स राइट, तो अफगानिस्तान से जीत जाएंगे। हाँ, हमें लग रहा है ऐसे है। ठीक है,
टू लेट।
हाँ बिल्कुल ठीक है, वैसे ही है वो। असल में जो है ना, वो आज मैंने देखा सारे लोग जो हैं, खासतौर पे मेरा बेटा और सारे यंगस्टर्स जो थे ना, जिस वक्त ये मैच चल रहा था जी इंडिया और श्रीलंका का, तो सारे अपने ऐसे ना फोनों पे बैठे हुए थे हैं मजद भाई।
हाँ जी,
तो ये जो फोनों पे ऐसे ऐसे करके बैठे रहते हैं ना, तो ये मैंने इनको कहा, मैंने बॉयज को कहा, मैंने कहा कि भाई तुम लोग तो अपने फोन के प्रिजनर हो गए हो। तो मैंने अपने कजन को भी एक को लिख के भेजा, तो आप देखें उसने कितनी इंटेलिजेंट बात मुझे लिख के भेजी
जी।
मैंने कहा ये सारे बच्चे जो है ना अपने फोन्स के प्रिजनर्स हो गए हैं।
हाँ जी,
तो वो मुझे कहता है इसीलिए तो इसको सेल फोन कहते हैं। हाउ इंटेलिजेंट, देखिए
दैट
इज व्हाई इट्स कॉल्ड सेल फोन,
इट्स कॉल्ड
सेल फोन।
क्या बात है जी,
क्या बात है ना।
या दैट मेक्स सेंस।
तो बस ये तो फिर पाकिस्तानियों के फिर है ना जी, बड़े किस्म के सोचने के तरीके।
देखिए
देखिए आप,
मगर मुझे बहुत अच्छा पसंद आया था आसिफ एंड
नवाज,
आसिफ एंड नवाज।
या दैट वाज वन, दैट वन वाज आल्सो वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव। यस,
आई मीन दे आर पीपल, दे आर सो ब्रिलियंट।
यस,
के दे सिट डाउन एंड दे क्रिएट ऑल दीज थिंग्स, यू नो, अमेजिंगली।
या
अमेजिंगली दे कम एंड दे क्रिएट ऑल दीज थिंग्स।
या या
क्या कहा जाए,
बिल्कुल।
मगर बाज लोग कहते हैं उनको ओ वेले हैं।
हाँ।
सारे बंदे वेले ने
और
बस वो उनके पास कुछ काम धाम है नहीं, तो हाँ, ये सारी चीजें
यही कुछ करते रहते हैं। नहीं नहीं, बट दिस इज ऑल्सो ह्यूज पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा जी, आप जाएं जनाब हमारी वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट जो है बड़ी प्यारी है, और वेबसाइट हमारी पे बड़ा कुछ आपको मिलता है, उर्दू की खबरें हैं, लोकल खबरें हैं, और उसके बाद जो है फिर आपको और बहुत कुछ मटेरियल मिलता है, जो है आप लाइफस्टाइल, मेडिसन, जो है वो एंटरटेनमेंट, हेल्थ, उसकी बहुत सारी आप चीजें देख सकते हैं। ये देखें जी, ये देखें, कल पैट्रिक ब्राउन साहब हमारे थे ना यहाँ पे, तो ये देखें उनकी हमने तस्वीर एक डाली हुई है। वो आए थे 770 के स्टूडियोज को, उन्होंने विजिट किया था, हमारे जो हैं ब्रैम्पटन के मेयर, तो काफी टाइम उन्होंने इधर गुजारा, आपने उनका इंटरव्यू भी कल सुना होगा, है ना जी। तो उसके बाद ये बाकी की खबरें हैं, और फिर जब जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो आपको नजर आएंगी यूथ जोन की खबरें, फिर कनेडा की और स्पोर्ट्स की, और राइट साइड पे आपको नजर आएंगे हमारे स्पॉन्सर। तो प्लीज हमारे स्पॉन्सरों को पीआर दिखाएं, ठीक है जी। ओके जनाब, और जनाब आपको हम बता रहे हैं ब्रिस्टल प्लेस के बारे में, तो आपको अगर डिटेल्स चाहिए तो आप आरफा जी जो हैं उनसे आप कांटेक्ट करें, और ये बहुत ही जबरदस्त लग्जरी 1 and 2 bedroom स्वीट डिजाइंस हैं, और ये 199 मेन स्ट्रीट ब्रैम्पटन, यानी कि तकरीबन डाउनटाउन ब्रैम्पटन के अंदर ही है ये, और 2 towers आ रहे हैं, और बड़ी जबरदस्त इनकी फैसिलिटीज हैं, और तमाम मेजर हाईवेज जो उनके पास हैं, 9 minutes फ्रॉम 410, 8 minutes फ्रॉम 407, 10 minutes फ्रॉम 410, इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिर्फ 4 minutes अवे है, क्योंकि जाहिर है कि ये डाउनटाउन ब्रैम्पटन में है, तो बड़ी जबरदस्त इसमें फैसिलिटीज हैं। तो आपको अगर इसकी और जानकारी चाहिए तो आप आरफा मुजफ्फर जी से कॉन्टेक्ट करें, इनका नंबर है 6478986245, 6478986245, ठीक है जी। चलो जी, हूं असी शुरू करने हैं जी अपनी खरबा।
मेरा ख्याल ऐसी करते हैं,
हाँ जी, टॉप ऑफ द आवर ले लेते हैं,
पहले टॉप ऑफ द आवर ले लेते हैं,
फिर नॉन स्टॉप तक हम चलेंगे, क्योंकि आज फिर बहुत सारी इंपॉर्टेंट खरबें हैं जी।
हाँ जी, नॉन स्टॉप, उसके बाद खबरें सुनाएंगे, पहले टॉप ऑफ द आवर।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब, द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com, QTL, बिकॉज वी केयर।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ।
S&S ਲੋਅਰਸ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ S&S ਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000। अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल की जी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747471।
यूके, स्विट्जरलैंड ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕੈਨੇਡਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 18 ਸਪਤੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਗੌਰ ਮੈਡਲਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 437-423-2626 ਜਾਂ 437-423-2626।
रेडियो 770 AM एंड ई आवाज TV सुपर एशिया होलसेलर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान के सैलाब जदगान के लिए नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स जमा कर रहे हैं। इस नेक मकसद में आपसे इल्तिजा और दरख्वास्त है कि आप भी दिल खोलकर ईमेल ट्रांसफर info@superasia.ca पर करें।
चलो मेले चलिए, फटा अपना मेला
आई मेला नियाग्रा फॉल्स सैटरडे सितंबर 10
पहुँच रहे कलाकार जैसे भी
बूटा मोहम्मद, बलराज बिलगा,
नवरीत कौर, हैरी संधू, आर किफ्टी, बुकन जट, हार्वी हरिंदर। फॉर मोर इन्फो 416-451-2222। मिलना बिल्कुल फ्री।
ईस्ट और वेस्ट एंड में बेस्ट चॉइस टैक्सी ओल्ड स्कार्बरो सिटी कैब अब बन गई है एक लार्जर टैक्सी कंपनी टोरंटो वन टैक्सी, जो ऑफर करते हैं कैश कॉल्स, कॉर्पोरेट अकाउंट्स, अ लार्ज TTC कॉन्ट्रैक्ट फॉर सिटी वाइड सेडान टैक्सी वर्क एंड स्टिकर्स फॉर एयरपोर्ट पिकअप ड्यूरिंग पीक टाइम। टैक्सी ओनर्स और ऑपरेटर्स के लिए इनके पास है मुस्तकम आमदनी बनाने का शानदार मौका। सिर्फ इस महीने सितंबर 10 तक ब्रोकरेज ड्यूज में जबरदस्त डिस्काउंट हासिल करें। कॉल 416-252-7777।
द मोस्ट ग्लोरियस, द मोस्ट एक्साइटिंग, द मोस्ट स्टार स्टडेड इवनिंग इज रिटर्निंग फॉर इट्स 8th एडिशन। Hum Awards, once again in Canada. On 24th September 2022, First Ontario Centre. To book your tickets, log on to www.ticketmaster.ca. For Canadian sponsorships, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca.
ब्रैम्पटन ट्रांजिट में सफर करने वालों के लिए एक जरूरी ऐलान। ब्रैम्पटन ट्रांजिट अपने रूट्स और स्केड्यूल्स में कुछ चेंजेस ला रहा है ताकि आपकी बेहतर खिदमत की जा सके। इन चेंजेस को आप महसूस करेंगे ट्यूसडे सितंबर 6 से, ताकि स्कूल शुरू होने से पहले आपको तमाम मालूमात दी जा सके। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए brampton transit.com या लाइव एजेंट से बात करने के लिए कॉल करें 9058742999 या हमें फॉलो करें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे @brampton transit और अपडेट्स।
जो है दूर रह के भी पास, UBL को है उनका एहसास। UBL रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ रोशन है पाकिस्तान।
जश्न है आजादी का, यूनाइटेड है पाकिस्तान।
जी साहब, नाज़रीन वेलकम बैक अगेन। एंड सब 6:09:19 हमारी घड़ी में हो चुके हैं और अब चलेंगे हम खबरों की डिटेल की जानिब। जी
یار مائی بھائی آج کل میں دیکھ رہی ہوں آپ کا جو ہے نا بڑا کیئر فری اسٹائل ہو گیا نا, آپ سوٹ لگا رہے ہیں اور نئی نئی شرٹیں پہن کے آ رہے ہیں.
میں ہوا
یہ کیا چکر ہے,
میں چکر کیا, میں جب ایک دو دفعہ یہاں سے اٹھ کے اندر باہر ہوا نا تو آئی اسٹارٹ سویٹنگ.
اچھا,
تو جب سویٹنگ کرنے لگا تو پھر میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو اپنی جیکٹ نکالیں, تو جیکٹ نکالی میں نے اور تھوڑی سی فریش ایئر لیا, تو اس کے بعد پھر
ورنہ تو آپ بڑی اپنی جیکٹ شیکٹ لگا کے بیٹھے ہوتے.
آئی فیل
آج گرمی ہو گئی ہے پھر سے.
آئی فیل نیکڈ وداؤٹ مائی جیکٹ.
یا یا
اوکے, آئی فیل نیکڈ وداؤٹ مائی جیکٹ, کیونکہ ہمیشہ
عادت ہو گئی ہے,
عادت ہو گئی ہے کہ ود دا جیکٹ ڈزنٹ میٹر ہاؤ ہارڈ اٹ از,
یس ہم
جیکٹ پہن کے رہتے ہیں. مگر جیکٹ اب آج
گرمی ہو گئی ہے کافی,
مجبوراً مجھے اتارنی پڑی. تو نہیں, گرمی کیا 22 ڈگریز ٹیمپریچر ہے,
اٹس
ناٹ ویری ہاٹ, مگر یہ کہ انفارچونیٹلی آئی ہیڈ ٹو ٹیک اٹ آؤٹ اینڈ ابھی بھی.
اچھا, ہاں تو یہ آپ بتاتے تو آپ کے لیے ذرا پکھا وکھا لگا دیتے ہم.
نہیں نہیں, وہ ایک دو لوگوں کو بلایا میں نے, وہ ہاتھ سے پنکھا,
ہاتھ سے ہاتھ سے کریں گے. واہ جی واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, ایکسکیوز می
یار, ہم کہوں
نا. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا جی ہم اپنی خبریں سن لے شروع کر لیتے ہیں جناب. آج آپ کو پتا ہی ہے بچے بیک ٹو اسکول ہیں, اور اونٹیریو کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں اسٹیفن لیچے صاحب, انہوں نے کہا جی کہ ہم پلان کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو اینڈ آف جون تک نیکسٹ ایئر کلاسز کے اندر رکھیں, کیونکہ اب ہم نے ایسے پروٹوکولز بنائے ہیں اور سیفٹی اور ہیلتھ کے, کہ بچے جو ہیں وہ ان پرسن لرننگ کریں گے. اور انہوں نے کہا جی کہ جو ہمارے 2 سال کے ایکسپیرینسز تھے اس کے اندر جو ہے ہم نے یہی کہا تھا کہ جی فل لرننگ جو ہے بچوں کی نہیں ہو سکی, تو اس لیے اب ہم نے پروویژنز رکھی ہیں بہت ساری, کہ جی ایک تو ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ بھی بچوں کو مل سکیں, انہانسڈ ہم نے کر دی ہیں کلیننگ اور سیلف اسکریننگ کی سروس, اس کے علاوہ ہم نے جو ہے ہیپا فلٹرز وغیرہ لگا دی ہیں اسکولس کے اندر, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اب کافی اچھا ہمارا اب ایکسپیرینس رہے گا. اچھا, ان کو جرنلسٹوں نے آج پوچھنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے اسپائک ہو گیا اس کے اندر اور اگر چیزیں جو ہیں وہ پھر سے خرابی کی طرف جانے لگی, تو انہوں نے اس چیز کا کوئی مطلب کلیئر نہیں جواب. آپ کو پتا ہے منسٹرز جو ہیں,
مگر
منسٹرز کے بڑے وہ, انہوں نے وہ جو رٹا کی مارا ہوتا ہے نا, بس وہی ان کو پتا تھا, کہتے نہیں نہیں میں آپ کو بتا تو رہا ہوں ہمارے پروٹوکولز ان پلیس ہیں. تو نہیں ماجد بھائی, کیوں فیئر کوسچن ہے, انہوں نے کہا کہ اگر اسپائک آ جائے تو یہ دیٹس اے فیئر کوسچن ماجد بھائی.
نہیں, اگر آ جائے, اگر آ جائے گا تو ول ٹیک ا لک ایٹ, ول سی واٹ وی کین ڈو, بٹ رائٹ ناؤ دیز آر آر پالیسیز. اگر اسپائک آ گیا وہ اس کے آگے بڑا اف ہے, یو نو, اینڈ اف از ان کیپیٹل لیٹرز, تو اگر آ گیا تو اگر آ گیا تو پھر ول ٹیک ا لک ایٹ اینڈ ول ڈیسائیڈ.
تو بس انہوں نے آپ والا ہی جواب دیا. پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے پروٹوکولز جو ہیں بڑے زبردست ہیں, اور ہم کو لگ رہا ہے کہ بچے جو ہیں جون تک جائیں گے اور پڑھیں گے. اور جو چیف میڈیکل آفیسر ہیں اونٹیریو کے, انہوں نے ایسا پروگرام ڈیزائن کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہیں وہ چیزیں بالکل جیسے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ اس طرح سے ہم جائیں گے. تو ڈیفیکلٹ تھے 2 ایئرس, تو کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ایسا پروگرام ڈیزائن نہیں ہوا ہوا تھا جس میں کہ ہم چیزوں کو کنٹرول کر سکتے تھے, اب کنٹرول ہم کر سکتے ہیں, لہٰذا بچے جو ہیں وہ رہیں گے. اچھا جناب, کل سے آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں, اب ساری سچویشن سسکیچون میں یہ جو ہوئی تھی میس اسٹیبنگز ہوئی تھی, اس میں 2 بھائی تھے, ڈیمین سینڈرسن 31 ایئرز اس کی ایج تھی, اس کو تو کل جو ہے مردہ حالت میں پایا گیا تھا. لیکن یہ جو مائلی سینڈرسن ہے 30 ایئرز اس کی ایج ہے, یہ ابھی تک ایٹ لارج ہے, لیکن آر سی ایم پی کا اور پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جیمس اسمتھ کری نیشن کے اندر دیکھا گیا ہے. آر سی ایم پی نے کہا ہے کہ جی ہمارے آفیسرز جو ہیں وہ رسپونڈ کر رہے ہیں, اور لیکن ریزیڈنٹس کو یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ شیلٹر نے, کیونکہ ابھی بھی یہ جو ہے آرمڈ اور ڈینجرس ہو سکتا ہے, اس کے پاس نہ آئیں. اور یہ جو لڑکا ہے, ہی از فیسنگ 3 counts آف فرسٹ ڈگری مرڈر, 1 count آف اٹمپٹڈ مرڈر اینڈ 1 count آف بریک اینڈ انٹر, تو یہ کافی اس کو جو ہے ڈینجرس ابھی بھی سمجھا جا رہا ہے. بہرحال اب اس کو ہولے ہولے لگ رہا ہے کہ یہ اس کے قریب پہنچتے جا رہی ہے پولیس بھی اور آر سی ایم پی بھی. تو
جسٹ امیجن, اتنے لوگوں کو مارنے کے بعد جی اس نے اپنے بھائی کو بھی مار دیا.
جی میں مار دیا, اگزیکٹلی. اچھا اب مجھے نہیں, اس سے بھی مجھے حیرت کی بات یہ آ رہی ہے ماجد بھائی کہ ابھی تک یہ کوئی مسلمان ہوتا نا تو ابھی تک یہ پورے یورپ نے کر دینا تھا. وہ جی ٹیررسٹ اٹیک تھا, اس میں 10 لوگ. اچھا ابھی تک ان لڑکوں کے لیے یہ ورڈ ٹیررسٹ کا ورڈ نہیں یوز ہوا کہ بھئی 10 لوگ مار دیے ہیں, 15 کو زخمی کیا, تو یہ ٹیررسٹ اٹیک تھا. نہیں نہیں, اور اب دیکھنا اگر اس لڑکے کو پکڑ بھی لیں گے نا تو کہیں گے وہ جی اس کا تو دماغ ٹھیک نہیں تھا, تو یہ اس کے تو مینٹل ہیلتھ ایشوز تھے, تو یہ تھے. اچھا کسی مسلمان کے لیے مینٹل ہیلتھ ایشوز نہیں نظر آتے, وہ ہمیشہ ٹیررسٹ ہوتا ہے. تو یہ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس کو ابھی تک ٹیررسٹ اٹیک کیوں نہیں کہا گیا. کیوں نہیں کہا گیا ہے؟ تو بہرحال جی اب بہرحال کو ڈھونڈ رہے ہیں
ابھی تک ان کو اس کی وجہ
موٹیو نہیں پتا چل رہا ہے.
ہاں موٹیو ہے نا, وہ پتا نہیں ہے کہ کیا موٹیو تھا اس کا, کہ وائی از اے پرسن لائک دیٹ. حالانکہ اس کی بڑی کرمنل ہسٹری ہے.
جی 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 جی
ان لاسٹ سو مینی ایئرس ہی از ویری ویل نون ٹو دا پولیس اینڈ اس کی جو ہسٹری ہے تو اس کے بعد جو دے نو دیٹ یو نو ہی از اے کرمنل گائے,
ہی از اے کرمنل. تو پھر وہی تو اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ ٹیررسٹ اٹیک ہے اس کا. تو اب جب تک وہ مطلب ہے بزوکا لے کے نہیں کوئی آئے گا تو یہ ٹیررسٹ اٹیک نہیں کہیں گے اس کو. تو ایسے ہے. اچھا جناب, جو کنزرویٹو ریس ہے لیڈرشپ کی فیڈرل لیول کی, وہ اب فائنلی کلوز ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ جو ہے اب کچھ ہی دنوں میں ان کے لیڈر کی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے. تو موسٹ پرابلی ابھی یہ جو یہ جیسے ابھی سیٹرڈے میرے خیال میں آ رہا ہے, سیٹرڈے کو ان کا جو ہے انہوں نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے. تو لیکن آج کا جو دن تھا, آج 5 بجے تک انہوں نے اوٹوا میں اپنے جو پارٹی ممبرس تھے انہوں نے دینے تھے اپنے ووٹس دینے تھے, جو بھی ہیں 5 ہوپ فلز ہیں. آپ کو پتا ہی ہے کہ کنزرویٹو پارٹی کی جو فیڈرل لیول کی ریس ہے اس کے اندر پیئر پوریور ہیں, جان شیرے ہیں, لیزلی لوئس ہیں, اسکاٹ ایچنسن ہیں, رومن بابر ہیں. لیکن جو پیٹرک براؤن صاحب ہیں ان کا لسٹ پہ نام تو ابھی تک ہے, لیکن پارٹی نے بہت کلیئرلی کہا ہے کہ چونکہ ہم نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا جولائی میں, اس لیے جو کوئی بھی پیٹرک براؤن کو ووٹ دے گا تو اس کی لسٹ میں جو سیکنڈ بندے کا نام ہوگا آٹومیٹکلی وہ ووٹ جو ہے اس بندے کو چلا جائے گا. تو اب جو ہیں یہ اپنا فورتھ پرماننٹ پارٹی لیڈر چوز کریں گے کنزرویٹو پارٹی آفٹر سٹیفن ہارپر, اینڈریو شیئر اینڈ ایرن اوٹول. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایرن اوٹول کے جانے کے بعد جو ہے کینڈس برگن, جن کی ایج 57 ایئرز ہے, آئی بھی تھی ہمارے اسٹوڈیوز میں انٹرم وہ پیریڈ کے اندر جو تھیں کنزرویٹو پارٹی کی لیڈر تھیں اور ہم نے ان کا انٹرویو کیا تھا یہاں پہ آئی تھیں, تو وہ فیبروری سے جو ہیں جب ان کو نکالا گیا تھا ایرن اوٹول اس کے بعد یہ دیکھ رہی تھیں پارٹی کو. اور ان کو فرسٹ ٹائم 2008 میں الیکٹ کیا گیا تھا مینیٹوبا کے ایریے سے, یہاں پہ جو ہے پورٹیج لجگر رائڈنگ جو ہے اس میں سے ہی آئی تھی. لیکن اب انہوں نے اناؤنس کیا ہے, آج انہوں نے کہا ہے کہ میں فردر الیکشن سیک نہیں کروں گی. تو اب جو ہے یہ مطلب الیکشن, اب یہ الیکشن تو خیر دور کی بات ہے, پولیٹکس میں ہی نہیں بیٹھنا چاہتی ہیں یہ. ایکوی فیکس کینیڈا جو ہے جی, اس کی آج ایک بڑی ڈیمنگ رپورٹ آئی ہے اور یہ کافی مطلب ہے کہ کینیڈینز کو افیکٹ کرے گی. وہ کہتے ہیں جی کہ اماؤنٹ آف نان مارٹگیج ڈیٹس جو ہیں کینیڈینز کے وہ بے تحاشا رائز کر گئے ہیں, کیونکہ اوور نائٹ لینڈنگ ریٹس ایک تو اوپر چلے گئے ہیں, انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو نان ایوریج نان مارٹگیج ڈیٹ پر کنزیومر جو ہے وہ 21,128,000 جو ہے سیکنڈ کوارٹر میں دیکھا گیا ہے, جو کہ
8% ہائی.
جی جی بے تحاشا جو ہے یہ ہائی ہے. اور وہ کہتے ہیں جی کہ کریڈٹ کارڈ بیلنسز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ اوپر چلے گئے ہیں فورتھ کوارٹر سے لے کے اب تک 2019 سے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایوریج کریڈٹ لمٹ اب جو نئے کارڈز پہ دی جا رہی ہے وہ ایٹ لیسٹ 5,800 دی جا رہی ہے, جو کہ کبھی آپ کہتے تھے جی میری کریڈٹ کارڈ کی لمٹ ہے بھائی $1,000 بھی آپ رکھ سکتے ہیں, $500 بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن اب وہ کہتے ہیں جی اب یہ اتنی اوپر چلی گئی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ٹوٹل نان مارٹگیج ڈیٹ ہے یہ $591.4 billion کو ٹچ کر رہا ہے, جو کہ 5.2% 2021 کو جو پچھلا سال تھا اس سے اوپر ہے. اس کے علاوہ جو کنزیومر ڈیٹ ہے وہ تو خیر اور بھی اوپر چلا گیا ہے, $2.32 trillion جو ہے سیکنڈ کوارٹر میں دیکھا گیا ہے, جو کہ 8.2% ہے کمپیئر ٹو سیکنڈ کوارٹر لاسٹ ایئر. اور نیو مارٹگیج والیوم جو ہے وہ گر گیا ہے 16.4% سے سیکنڈ کوارٹر میں کمپیئر ٹو سیم پیریڈ ان 2021. اینڈ ایوریج لون اماؤنٹ فار دا فرسٹ ٹائم فار ہوم بائرز از ڈاؤن 0.5% ان سیکنڈ کوارٹر.
بیکاز ہاؤسز آر ناٹ سولڈ ایز ایئر بیفور
اور اوور نائٹ لینڈنگ ریٹ بھی زیادہ ہو گیا ہے. تو اب لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں نا, اپنا کیلکولیٹ کر رہے ہیں نا کہ بھائی اتنا اب ہم مارٹگیج دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں. ایک اور اسٹڈی آئی ہے جی, نیویگیٹنگ پاتھ فارورڈ فار ڈائمینشیا ان کینیڈا. اور اس کی رپورٹ کے مطابق ڈائمینشیا بھی جو ہے کینیڈا میں بہت زیادہ بڑھ جائے گا. یہ رپورٹ جو ہے کینیڈا کی جو الزائمر سوسائٹی ہے وہ لے کے آئی ہے. وہ کہتے ہیں جی 1 million کینیڈینز جو ہیں بائی دا اینڈ آف ڈیکیڈ جو ہے دے ول بی لیونگ ود ڈائمینشیا, جس کا کہ مطلب ہے 65% انکریز فرام ایسٹیمیٹڈ 597,300 کینیڈینز لیونگ ود ڈائمینشیا ان 2020. اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 2020 میں 124,000 جو تھے نیو کیسز सामने आए थे कनाडा के अंदर, विच मींस 15 पीपल सफरिंग फ्रॉम डायमेंशिया जिनका पता लगाया था, एवरी आवर जिनके बारे में पता गया.
Again, वो कहते हैं जी मेंटल हेल्थ
वो कहते हैं जी बाय 2030 ये इंक्रीज कर जाएगा 187,000 न्यू केसेस. जितने ऑलरेडी हैं वो तो हैं ही, न्यू केसेस इतने सामने आएंगे, विच मींस 21 इंडिविजुअल्स ईच आवर.
Yeah, उनके बारे में क्लियरली मेंटल हेल्थ.
हाँ जी, हाँ जी,
इतना प्रेशर्स से गुजर रहा है इंसान कि उसको चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो चाहे कोई भी हो, इट्स गेटिंग, ये बीमारी जो है ना मर्दों में ज्यादा है.
वो औरतें पागल कर देती है ना मर्दों को. तो वो कहते हैं जी उसकी बहुत सारी वजह है. उसकी वजह एक तो ये भी है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ओल्ड होती जा रही है, और उसके अलावा जो है ये पॉपुलेशन बढ़ती भी जा रही है, तो उसकी वजह से जितनी बढ़ेगी उसमें बीमारियां भी उतनी नजर आएंगी. ईच ईयर जो है वो कह रहे हैं कि 250,000 जो एनुअली है ये बढ़ेगी और 2040 तक, तो इसके साथ साथ जो है वो बीमारी भी बढ़ती चली जाएगी. वो कह रहे हैं कि जी बाय 2050 नंबर ऑफ कैनेडियंस जो है ओवर 1.7 मिलियन इस बीमारी से को फेस करेंगे, 3 times मोर देन 2020, और 1.6% डायमेंशिया के केसेस थे 20 उससे ईयर बैक में. और वो कहते हैं जी कि बाय 2050 ये राइज कर जाएंगे और 3.6% से. तो इसका मतलब है कि ये मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं बहुत बढ़ते जा रहे हैं. हालांकि अभी कुछ दिन पहले भी फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम बहुत सारे पैसे रख रहे हैं मेंटल हेल्थ के लिए और हम अब ये स्पेंड करेंगे, लेकिन जनाब तुसी लोगों के मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करोगे तो फिर उनको मेंटल पीस नहीं आप देंगे, उनके पास जॉब्स नहीं रहेंगी, उनके पास पेंशन नहीं होंगी, उनके पास हेल्थ केयर नहीं रहेगा, तो मेंटल प्रॉब्लम्स तो उनके बढ़ेंगे. लेकिन मेरा ख्याल है इन सारे कनेडियंस जो है ना, गोरा कनेडियंस जो है, इनको शिप भर के एक दफा पाकिस्तान ले कर जाए, उधर से होके आएंगे ना सबके दिमाग सेट हो जाएंगे बिल्कुल. तो खासतौर पर ये जो भी फ्लड्स आए हुए हैं ना वो उन इलाकों में इनको छोड़ देंगे गोरों को जाके. फिर आप देखो ना इंटरनेट, ना साफ पानी, ना रहने की जगह, ना खाना पीना, ना कुछ, सोने की जगह. इनको जरा पानी में छोड़े थोड़े दिन, बाद सबके दिमाग सेट हो जाएंगे. इधर आके अल्लाह का शुक्र करेंगे. बहरहाल जी ये जनाब ये बीमारियां बढ़ रही हैं. एसोसिएटेड प्रेस की जनाब आज एक न्यूज है, और इसके मुताबिक डजन्स ऑफ लेबनीज और सीरियन माइग्रेंट्स जो हैं बेचारे वो भागने की कोशिश कर रहे थे यहां से लेबनान से, और वो अब स्ट्रैंडेड हैं मेडिटेरेनियन सी के अंदर. ये जो है दे आर नियर द कोस्ट ऑफ माल्टा एंड इटली, और ये इनकी जो फिशिंग बोट है ये सिंक करती जा रही है. ऑलरेडी 2 बच्चे जो है उनकी डेथ हो गई है, जो कि जिनको के खाना और वो नहीं मिल सका था साफ पानी. 60 माइग्रेंट्स इसके ऊपर हैं, और जो आसपास के इलाके हैं वो इटली में जो ट्रिपली वगैरह और इलाके, उनको वो बड़ी दुहाइयां दे रहे हैं, अपने सैटेलाइट फोन से मैसेजेस भेज रहे हैं कि हमें बचाओ, और कोई अभी तक हेल्प नहीं आई है. लेबनान जो है उसमें 6 मिलियन की वो पॉपुलेशन है, उसमें से 1 मिलियन जो है सीरियन है, और आपको पता ही है कि 2019 से लेबनान की हालत बेतहाशा खराब है, इकोनॉमिक हालत. तो 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन हैज ऑलरेडी गॉन इन पॉवर्टी, तो इसलिए वो जो है यहां से भागना चाहते हैं और इटली जाना चाहते हैं, और लेकिन अब ये फंस गए हैं. तो अपने इन्होंने रिलेटिव्स और फैमिलीज को कहा कि भाई ये जो यूरोपियन यूनियन है इनके जो गार्ड्स हैं, कोस्टल गार्ड्स, इनको को हमारी हेल्प करें, क्योंकि वो जो शिप है अब ये सिंक हो रहा है, क्योंकि वो अब मूव नहीं कर रहा ना कॉन्स्टेंटली.
नोबडी वांट्स टू टेक दीस रेफ्यूजीज.
यस दैट्स राइट.
यूरोप में ये हशर हो गया है कि उनकी खुद की हालत खराब है आजकल,
खराब है. हाँ जी,
दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट एनी मोर रेफ्यूजीज.
रेफ्यूजीज, हाँ जी, और ये तो पेपर्स के बगैर है ना, अनडॉक्यूमेंटेड है ना ये तो exactly. बस घुस जाते थे और गायब हो जाते थे उनके कंट्रीज में. तो अब इस तरह के तो अनडॉक्यूमेंटेड रेफ्यूजीज वैसे भी अब उनको नहीं चाहिए जो वहां पे भी इकोनॉमिक कंडीशन है यूरोपियन यूनियन में. AFP की आज ये न्यूज है जी, और AFP की इस न्यूज के मुताबिक बहुत ही एक जो पावरफुल टाइफून है हिनन मोर, वो अब साउथ कोरिया में आ गया है, और उसकी वजह से वहां पे काफी तबाही जो है मची हुई है. खास तौर पे उनके जो रिजॉर्ट आइलैंड है, एक तो जीसुका और बुसान के पास, और दूसरे भी कुछ इलाके जो हैं ये काफी ज्यादा यहां पे ये टाइफून जो है हिट कर रहा है. इसमें ये हुआ है कि रोड्स बहुत सारी तबाह हो गई हैं, क्योंकि माजिद भाई 3 feet रेन हुई है. कैन यू इमेजिन इतनी बेताशा रेन हुई है, अगेन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और बहुत सारी जो पावर लाइन्स थी वो गिर गई हैं, तो इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं बगैर पावर के हैं यहां पे. और अभी तक जो खबर आई है उसके मुताबिक 14 लोगों की डेथ हो चुकी है, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके हान डुकसू, उन्होंने कहा जी कि हम इवैक्यूएशन का काम हमने शुरू किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को हम कह रहे हैं कि फ्लड के ये जो एरियाज हैं इनसे दूर रहें. और संडे तक जो है 37 inches जो है वो रेन हुई थी, इसमें जो वो गिरी थी बिजली की तारें, उसमें 20,000 houses इन अ कंट्री लाइक साउथ कोरिया अभी भी वहां पे पावर नहीं है 20,000 हाउसेज में. और इसके अलावा गवर्नमेंट ने आज कहा है जी कि 3,463 पीपल जो है उनको इवैक्यूएट किया गया है और 14,000 लोगों को हमने और एडवाइज किया है कि फौरन अपने घर छोड़ के इन इलाकों में से निकल जाएं. 600 स्कूल्स जो थे आज सियोल के अंदर बंद थे और क्लासें जो हैं ऑनलाइन चल रही हैं. हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स इन साउथ कोरिया हैव बीन कैंसल्ड और बहुत सारी अब फेरी सर्विसेज जो हैं वो पहले चलाई थी और अब वो भी कैंसिल कर दी हैं. कभी कभी लोग जो हैं फेरीज पे भी लोगों को इवैक्यूएट कर रहे थे लेकिन
ये कोई गरीब मुल्क नहीं है,
ये बहुत अमीर मुल्क है, बेतहाशा अमीर मुल्क है.
एग्जैक्टली
या साउथ कोरिया. तो उधर जी ये सारे जो हैं मामलात चल रहे हैं. और जनाब जैसे हमने आपको कल बताया था कि लिज ट्रूस जो हैं 47 इयर्स उनकी एज है, शी इज प्रीटी यंग, तो वो जो है फाइनली जीत गई थी लीडरशिप रेस इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के लिए. तो उन्होंने आज जो है अपनी जो है वो मुलाकात की है क्वीन के साथ और फाइनली उनको जो है ये देखें जी जो हमारा टीवी देख रहे हैं तो ये देखें क्वीन जो है इस एज में भी कितनी जो है वो है स्मार्ट सी. और आज भी उन्होंने मुलाकात की इनसे लिज ट्रूस से और हमने आपको बताया ही था कि ये अपने बेलमोरल एस्टेट में है स्कॉटलैंड में और उसके बाद जो है इनको प्राइम मिनिस्टर प्रनाउंस किया गया है. इनके जो प्रेडिसेसर थे बोरिस जॉनसन साहब उन्होंने फाइनली जो है फिर अपना जो है क्वीन से मुलाकात के बाद रेजिग्नेशन दे दिया था और उन्होंने अपना जो लास्ट मैसेज आज छोड़ा है उसमें उन्होंने अपनी बड़ी तारीफ की है बोरिस जॉनसन साहब ने. अपनी तारीफ की. उन्होंने कहा मेरे होते जो है यूके की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रेंथन हुई है और मैं उनमें से एक उन रूस्टर्स में से एक हूं जो अपना काम करता है और मैंने लोगों को जो है बड़ा एनर्जी क्राइसिस में से निकाला है कि ताई स्ट्राइक्स चल रही हैं तो मुल्क दे बीच बयान की गल्ला कर रहे हो. तो बहरहाल जी उसके बाद फिर ये अपनी गाड़ी में बैठे और जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है वहां से निकल के चले गए और अब जो है कल से मिस ट्रूस जो है अपनी सारी जिम्मेदारियां
पार्टियां ले डूबी.
हाँ पार्टियां ले डूबी. और दूसरी बात यह है कि आज उन्होंने प्रॉमिस किया है वैसे तो लिज ट्रूस ने, अब पता नहीं है लोग कहते हैं कोई इतनी कोई कॉम्पिटेंट तो है नहीं है वैसे लेकिन अब ये क्या करेगी, लेकिन वो कहते हैं कि शी इज अ वेरी सरप्राइज्ड पैकेज, कुछ भी कर सकती है ये. तो इन्होंने आते सारी जो आज की अपनी स्पीच किया उसमें उन्होंने कहा जी कि इकोनॉमी में की जो है मुल्क की वो मैं ठीक करूंगी.
बट व्हेनेवर दे टॉक अबाउट इकोनॉमी को सही करना है हमने, आम आदमी की जिंदगी को अच्छा करना है हमने. हाँ, हाँ. और उसके साथ साथ हम जो है यहाँ पर ये समझ लें आपके जितना भी टैक्स हम आपको ब्रेक देंगे, टैक्स ब्रेक देंगे. टैक्स गिवन टैक्स ब्रेक्स इज नॉट हेल्पिंग द ऑर्डिनरी पर्सन. टैक्स ब्रेक देंगी आप तो ओके सो दे विल सेव $390 या £390 फॉर द ईयर. What is that going to do to an ordinary person?
Yeah.
So you do it like Justin Trudeau did. People don't like it. But thousands of dollars ke serves diye inhone. You know, people, unko logon ko usme bhi wo nukte nikalte hain. But the thing is that at least log survived at that time.
But Majid bhai, the main thing is, dekhe na, ye jo bheek hoti hai, bheek pe log kitni der baith sakte hain. Bhai, logon ke liye proper jobs ab create karo na bhai. Taake logon ki, dekhe na, ek jo continuity job ki hoti hai na Majid bhai, usse halat ke andar sudhar aane lagta hai. दो दिन जा रहे हैं दो दिन स्ट्राइक है, दो दिन जा रहे हैं दो दिन स्ट्राइक है, तो फिर ये कैसे घर चलेंगे? इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है ऑलरेडी और बहुत सारी चीजें चल रही हैं साथ साथ,
उनके खजाने में खुद ही पैसा नहीं है.
पैसा ही नहीं है. सो दैट्स द थिंग एक्चुअली. तो ये ऐसे. अच्छा जनाब, आज द प्रिंट की बड़ी जबरदस्त स्टोरी है क्योंकि अब ऋषि सुनक साहब जो हैं वो हार चुके हैं इंग्लैंड की जो प्राइम मिनिस्टरशिप की रेस थी, लेकिन अब इसके ऊपर इंडियंस जो हैं उनको बड़ी तकलीफ है इस चीज की, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, क्योंकि वो तो समझ रहे थे कि ये इंतहाई जीनियस बंदा है, भी बड़ा पढ़ा लिखा, स्टैनफर्ड का पढ़ा हुआ, मैंने आपको बताया ही था. नारायण मूर्ति की जो बेटी, इंडिया के जो वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल है, उनकी बेटी से शादी की है, वो भी स्टैनफर्ड की पढ़ी हुई है, तो है तो बड़ी केपेबल फैमिली है ना, बड़ा पावर हाउस है ये. और लंदन में इनको बड़ा ही वो जो है ओ की नजर से देखा जाता है क्योंकि बहुत हाई फ्लाइंग लाइफस्टाइल है इनका. ठीक है जी. तो अब द प्रिंट की आज ये स्टोरी है और इसने ये कहा है व्हाई ऋषि सुनक लॉस्ट यूके पीएम चेयर. उन्होंने कुछ रीजन इसमें लिखे हैं.
अच्छा,
अच्छा उसमें उन्होंने लिखे है जी कि ये जो रेस है, हमारे बहुत सारे इंडियन भाई शायद ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंट, इट्स नॉट अस सेइंग, द प्रिंट कहता है कि ये समझेंगे कि शायद जी इसकी रेस और ओरिजिन की वजह से जो है ये इसने लॉस किया, ये उसकी वजह से नहीं है, ये आइडेंटिटी मैटर्स की वजह से भी नहीं है, ये जेंडर बेस्ड है. ये जेंडर बेस्ड थिंग है. अच्छा जी, अब जेंडर बेस्ड क्या, अब इन्होंने बताने की कोशिश की है इसमें. वो कहती है जी पहला रीजन जो है ऋषि सुनक साहब जो है क्यों हारे हैं वो ये है कि इन्होंने लॉयल्टी नहीं दिखाई. जो बोरिस जॉनसन साहब हैं, ये थे पहले बंदे जिन्होंने रिजाइन किया और उसके बाद लोगों का तांता बंदा चला गया और टोरीज जो हैं उनका नाम ही कंजर्वेटिव है, तो वो इस चीज को बड़े क्रिटिकल तौर पे देखते हैं कि अगर किसी बंदे में लॉयल्टी ही नहीं है तो अपनी पार्टी के साथ ही, तो फिर ये हमारे साथ क्या दिखाएगा। वो आपका, और इन्होंने बड़ी जबरदस्त एक मिसाल दी है, वो आपने अगर पढ़ा होगा शेक्सपियर का जूलियस सीजर, तो जूलियस सीजर जो है उसके बड़े करीब है ब्रूटस, लेकिन आखिरी में जब उसकी उसको आके छुरा मारा तो ब्रूटस ने भी मारा, तो जूलियस सीजर उसकी तरफ देखता है और कहता है यू टू ब्रूटस,
तुम भी
यू टू ब्रूटस। तो वो कहते हैं कि ही टर्न्ड आउट टू बी अ ब्रूटस। तो कंजर्वेटिव्स को ये अच्छा नहीं लगा, ऋषि सुनक ने जो कुछ ये किया तो उसको उनको अच्छा नहीं लगा, हालांकि ये बोरिस जॉनसन के बहुत ज्यादा क्लोज
राइट हैंड मैन था,
ट्रेजरी का ये इंचार्ज था, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर जिसको बोलते हैं वो था। तो इसने ये किया तो एक तो ये चीज उनको जो अच्छी नहीं लगी। अच्छा जी, दूसरी कहते हैं जी कि ऋषि सुनक साहब बींग एन एजियन ही ट्राइड टू प्ले टू मच ऑफ अ मैन। अच्छा जी, अब ये टू मच ऑफ अ मैन क्या है? वो टू मच ऑफ अ मैन ये है कि जिस वक्त टीवी की इनकी डिबेट्स हो रही थी जो है लिज ट्रूस के साथ, तो कॉन्स्टेंटली उसको रोक रहा था, कॉन्स्टेंटली उसको इंटरप्ट करता था, बिल्कुल उसको बात ही नहीं करने देता था और वो चुप कर जाती थी और ये कॉन्स्टेंटली बोलते थे।
इंग्लिश कल्चर दे डोंट एक्सेप्ट दैट।
हाँ, तो वो कहने लगे जी कि जब उन्होंने देखा कि भई ये तो औरत को बात ही नहीं करने दे रहा है, तो ये तो शायद इस काम के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अपनी बारी है कि नहीं है तो भी कॉन्स्टेंटली उसको रोक रोक के बोल रहा है। तो प्रिंट कहते हैं कि शायद ये हमारे जो इंडिया के जो टीवी के टॉक शोज होते हैं जिसमें कि हमारे एंकर जो मेहमान होता है उसको बोलने ही नहीं दे रहे होते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, तो शायद वो ये लाइन टो कर रहा था, लेकिन ये गोरे को ये लाइन जो इन्होंने टो की वो पसंद।
ही वाज ट्राइंग टू प्रूव कि हाउ स्ट्रांग आई एम
एंड व्हाट आर केपेबल पर्सन आई एम।
एग्जैक्ट
राइट। अच्छा, तीसरी वो बात करते हैं, वो कहते हैं जी कि तीसरी इन्होंने जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया कि ये जितनी भी डिबेट होती थी, जिशांत जरा तस्वीरें दिखा दें, दो तीन हमारे पास तस्वीरें हैं ऋषि सुनक साहब की, दिखाएं जरा। तो वो कहते हैं जी कि जिस वक्त ये टीवी के डिबेट्स होते थे तो उसके अंदर ऋषि साहब जो हैं ये कॉन्स्टेंटली कहते थे कि ये जो इतना कोविड का बैड वक्त आया तो उसमें से मैंने निकाला, और जो है ये उनके साथ बोरिस जॉनसन साहब के पास साथ बैठे होते थे और बोरिस जॉनसन और ये जो है काफी बोस्ट कर रहे होते थे, तो वो कहते थे जी कि ये हमने इधर से बड़ा, हमने स्ट्रांग इकोनॉमी बनाई, हमने ये किया, हमने ये किया। तो वो कहते हैं जी कि फिर इन्होंने क्या किया कि जिस वक्त पेंडेमिक आई तो ये ट्रेजरी मिनिस्टर था, यानी कि ये फाइनेंस मिनिस्टर था, इसने इतनी बेतहाशा स्पेंडिंग कर दी कि नेशनल एक्सचेकर में पैसा ही नहीं रहा, और फिर इन्होंने क्या किया जो इनकी टोरीज की ट्रेडिशंस हैं, इन्होंने जनाब टैक्स कट्स जो हैं वो करने शुरू कर दिए। तो वो कहते हैं जी कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये ना आप समझें कि ये जो है इसके सिन का कलर या कि ये इंडियन ओरिजिन का,
दैट इज वन आई वुड से यू नो व्हाट, दैट इज वन ऑफ द रीजंस टू।
हाँ नहीं, वो प्रिंट वाले ये नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं हम नहीं मानते,
मगर
जेंडर जो था,
तीन रीजंस दिए उन्होंने, add the fourth reason too. There are a lot of people still
वो कहते हैं जी इंडियंस तो यही सोचते हैं कि क्योंकि ये जो था घोरा नहीं था तो इसलिए, लेकिन प्रिंट वाले कहते हैं ये बिल्कुल रीजन नहीं था, ये मुल्क जो है इसमें काफी जो है उन्होंने वो फ्रीडम दी हुई है एंड दे डोंट केयर अबाउट दीज थिंग। तो वो कहते हैं जी कि इसलिए ये जो बार बार कहता रहा कि जी हमने बड़ा अजीम काम किया पेंडेमिक के बीच में, तो उसमें भी कोई सही जो है वो काम इकोनॉमी में हुआ नहीं था असल में, और इन्होंने फिर टैक्स कट्स जो है वो देने शुरू कर दिए। अल जजीरा की आज एक स्टोरी है जी, और अल जजीरा की स्टोरी के मुताबिक जो है वो अब रशिया ने अनाउंस कर दिया है कि वो बिल्कुल अब रिज्यूम नहीं करेगा गैस अपनी, ना तो जर्मनी को ना तो यूरोपियन यूनियन को। अल जजीरा की ये रिपोर्ट जो है इसने, अगर हमारा जो टीवी देख रहे हैं तो बड़ा जबरदस्त उन्होंने ग्राफिक एक बनाया हुआ है, तो ग्राफिक आपको अगर आप देख रहे हैं तो आपको बताएगा कि ये यूरोप के अंदर कितनी डिपेंडेंस है किस किस चीज के ऊपर। वो कहते हैं जी कि इनमें यूरोपियन यूनियन में इनका 34% जो है वो अपना गैस से इनकी जरूरत चलती है, बेलारूस जो है मोस्टली डिपेंडेंट है गैस के ऊपर, और रशिया तो खैर उसके पास गैस है तो रशिया तो 54% अगर वो कहते हैं हमारी डिपेंडेंस गैस पे है तो दे कैन टेक केयर ऑफ दैट। इटली जो है 42%, यूके 40%, हंगरी 39%। इसके अलावा जो 2/3 यानी कि 76% ऑफ यूरोप की जो नीड्स हैं वो फॉसिल फ्यूल से आती हैं, और वो उसमें जो है गैस पे करती है, यानी का जो गैस का पार्ट है दैट इज 34%, ऑयल 31%, कोल से ये जो एनर्जी जनरेट करते हैं दैट इज 11%. इसके अलावा हाइड्रो पावर, सोलर, विंड, बायोफ्यूल्स, इनसे भी ये एनर्जी पैदा करते हैं जिनका के हिस्सा 14% है, और सिर्फ 10% जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो पैदा करते हैं. अब रशिया जो है, रशिया कह रहा है कि चूंकि अब मैं स्क्वीज करता जा रहा हूं, तो अब ये जो हमारे सारे यूरोपियन भाई हैं इनको हाथ पैर पड़े हुए हैं, क्योंकि अब विंटर आने वाली है. और आज तो उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया कि अगर आप अपना प्रॉमिस जो है, जो हमने आपके साथ किए थे, जो डील्स किए थे, उसके ऊपर आप नहीं चलेंगे, हमारे ऊपर से सैंक्शंस नहीं हटाएंगे, और हमें जो है जो कुछ हमने आपके साथ डील्स की थी वो उस पर नहीं चलेंगे, खासतौर पर जब सबसे बड़ी बात करते हैं कि रूबल्स में पेमेंट्स नहीं करेंगे, तो अब ये फिर गैस आपके लिए नहीं खोली जाएगी. तो अब बायन तो सी सोच लो फिर. हैं जी, सर्दी तो बड़ी सख्त आती है यूरोप में, तो
उसके अलावा सिर्फ सर्दी की बात नहीं है, पूरी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड एवरीथिंग एल्स, उस पर जो नुकसान होगा ना वो बड़ी बात है,
वो
पूरी इकोनॉमी बैठ जाएगी.
यस, यही तो बात है. ये अच्छा जी, आज वॉशिंगटन पोस्ट की आज एक बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट है, और ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट है, और ये हम आपको सारी खरमें सुनाने के बाद सुनाएंगे. वॉशिंगटन पोस्ट की ये पोस्ट जो है, शायद आपको लगेगा कि अमेरिका में भी पाकिस्तान के कुछ रंग ढंग आने लगे हैं. वो ऐसी रिपोर्ट है, ये हम आपको बाद में सुनाएंगे. न्यूयॉर्क टाइम्स की जनाब एक रिपोर्ट है, और इसके मुताबिक रशिया जो है वो, न्यूयॉर्क टाइम्स को असल में ये जो रिपोर्ट है ये इन्होंने सोर्स की है यूएस इंटेलिजेंस के जो अदारे हैं उनसे, यूएस इंटेलिजेंस के अदारों ने से जो सोर्स की है न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट, इसके मुताबिक ये जो सारी हंकी डोरी पिक्चर पेश कर रहा है रशिया, इनके मुताबिक, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, कि जी हमारे ऊपर सैंक्शंस का कोई असर नहीं हुआ, और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, उसके ऊपर असर हो रहा है. उसकी वजह यह है कि अब इसके पास चेन सप्लाई के इतने मसले हो गए हैं, और वो पार्ट्स जिनसे के खासतौर पे ये अपने बनाते थे मिलिट्री इक्विपमेंट, उसके लिए कोई इसके पास जो है वो पुर्जे अब इसको नहीं मिल रहे. एज अ रिजल्ट रशिया हैज स्टार्टेड बाइंग वेपन्स फ्रॉम नन अदर देन नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया को अब उन्होंने कहना शुरू किया. अच्छा जी, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि हमारे इंटेलिजेंस के जो अदारे हैं, यूएस इंटेलिजेंस ने जो डी क्लासिफाइड जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उसके मुताबिक इनकी जो वेपनरी, टाइमिंग, साइज ऑफ शिपमेंट और कितनी की सेल हुई है वो तो डिटेल्स अभी तक हमारे पास नहीं आई है, लेकिन हमें यह जरूर पता चला है यूएस इंटेलिजेंस सर्विसेज से कि जो रशिया है वो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स, आर्टिलरी शेल्स, और ये जो है 152 mm आर्टिलरी शेल, कट्यूशका स्टाइल रॉकेट्स, ये सारे के सारे जो नॉर्थ कोरिया प्रोड्यूस करता है वो इनसे ले रहा है. हालांकि वो बहुत कोई हाई क्वालिटी के नहीं है, लेकिन फिर भी इनको चाहिए, क्योंकि रशिया सैंक्शंस की वजह से अपने रॉकेट्स और आर्टिलरी नहीं बना पा रहा है. तो सैंक्शंस का असर जो है
रशिया
वो
पे
तो
बहुत असर पड़ा है इसका. रशिया जितना भी डिनाई कर ले कि हमें पे कोई असर नहीं है, यस दे मेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन ऑयल, जो ऑयल की प्राइस ऊपर चली गई, तो दे मेड बिलियंस ऑफ, बट बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके वो क्या करेंगे जब उनके पास इक्विपमेंट ही नहीं है.
हाँ, जब उनके पुर्जे नहीं मिल रहे हैं, पुर्जे नहीं मिल रहे,
बेचने वाला
भी नहीं मिल रहा. या बिल्कुल ऐसे है. तो ये है. अच्छा जी, आज जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना साहिबा, वो आज इंडिया में पहुंची हुई हैं, और उन्होंने आज मुलाकातें जो हैं मोदी जी के साथ की हैं, और यहां पे इस मौके पे उन्होंने बेशुमार जो हैं ट्रीटीज भी साइन की हैं, जिसमें कि एक सबसे बड़ा जो 26 ईयर से फंसा हुआ था ये ट्रांस बाउंड्री रिवर जो है कुशियारा, उसका जो वाटर है उसकी शेयरिंग करनी थी इन्होंने, जो कि 26 ईयर से झगड़ा चल रहा था उसके ऊपर आज MOU साइन किया गया है, और वो है. और इसके ऊपर शेख हसीना साहिबा ने बात करते हुए कहा कि हम क्लोजेस्ट नेबर्स हैं, और हम एक रोल मॉडल है हमारी दोस्ती, एरिया के नेबरहुड जो डिप्लोमेसी है उसके लिए हम इन अ स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन काम करते हैं, और मैं और मेरी फैमिली सारी जिंदगी इंडिया का धन्यवाद करती रहेगी, क्योंकि जब 6 इयर्स मैं एग्जाइल में थी 1975 से 1981 में, तो हिंदुस्तान ने हम दोनों बहनों को शेल्टर दिया था, तो हम उनके बहुत ज्यादा जो हैं शुक्रगुजार हैं, और भी हम बहुत सारे MOU साइन कर रहे हैं ताकि हम अपनी ट्रेड को बढ़ा सकें. लेकिन इसके ऊपर जो अपोजिशन है उसने एतराज किया है, उसने कहा हाँ जी ठीक है, ये तो आपने बड़ा तीर मारा है, लेकिन इसके अलावा जो आपका दूसरा जो स्पेशल वो था ट्रीटी था वो आप नहीं ان کے ساتھ کر سکے ہیں, اور وہ تھا تیستا ریور کا. تیستا ریور کے جو واٹر کی شیئرنگ ہے اس کو ابھی تک ہندوستان نہیں مان رہا ہے, تو وہ تو آپ ابھی کر نہیں سکی ہو. تو اس نے کہا کہ باقی کچھ جو کچھ ہم نے اچیو کر لیا ہے, اور خاص طور پہ انہوں نے کہا جی کہ 1971 کی وار میں جو ہندوستان ہمارے ساتھ کھڑا رہا اس کے لیے ہم بڑے شکر گزار ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس سے پہلے بھی ہم نے بیکاز وی آر سو کلوز فرینڈس, تو ہم نے وہ جو گنگا واٹر ٹریٹی جو تھا وہ بھی ہم نے سائن کیا تھا, اینڈ دیٹ واز ایز ارلی ایز 1996. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری دوستی جو ہے اسٹرانگ فوٹنگ کے اوپر ہے اور ہم ایسے ہی آگے چلتے رہیں گے. پی ٹی آئی کی نیوز ہے, دس پی ٹی آئی از پریس ٹرسٹ آف انڈیا. پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی اس نیوز کے مطابق کانگریس کے لا میکر ایک جو ہیں ایم ایل اے پردیپ سرکار, عبد الخلیق اور عبد الرشید مونڈل, آصف نظر, عبد الباطل کھنادار, یہ سارے جو لا میکرز ہیں انہوں نے آج پوچھا ہے, ایک لیٹر لکھا ہے نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز کو, کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ ایک مدرسہ جو بوگا گون کے ایریے میں ڈھایا گیا ہے آسام کے اندر, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ ہمیں بتائی جائے, کیونکہ اس کے اندر تقریباً 224 بچے رہتے تھے اور وہ تعلیم حاصل کرتے تھے, اور وہ بہت دور دور کے علاقوں سے آئے ہوئے تھے. بغیر کسی نوٹس دیے اگست 31 کو یہ مدرسہ ڈھا دیا گیا, ان کو کوئی بھی جو ہے نوٹس نہیں دیا گیا, اور وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے رہے, ان کے پاس کوئی شیلٹر نہیں تھا, اور اینڈ دس واز ڈن ان دا مڈل آف دا نائٹ. تو یہ کیا کچھ ہو رہا ہے, اور یہ ان لافل ایکٹ جو ہے, کیونکہ ان بچوں کو ایڈوکیشن سے ڈینائی کیا گیا ہے, تو اس کا آپ اب جواب دیں. تو یہ جو کانگریس کے سارے جو ہیں ایم ایل ایز, یہ اب انہوں نے پوچھا ہے نیشنل کمیشن فار مائنورٹی سے کہ یہ بھائی ہندوستان میں کیا چل رہا ہے, اس کا جواب دیں, یہ مدرسہ کیوں ڈھایا ہے آپ نے. بنگلورو جو ہے جس کو کہ ہندوستان کا آئی ٹی ہب بھی کہتے ہیں, وہاں پہ بھی بے تحاشا فلیش فلڈز آئے ہوئے ہیں, اور لائف جو ہے یہ دیکھیں, جو ہمارا ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ سکیں گے کہ حالت کافی وہاں پہ بنگلورو میں بھی خراب ہے. ساری روڈز اور گھر جو ہیں وہ پانی کے نیچے گئے ہوئے ہیں, اور جو یہاں پہ میجر آئی ٹی کی کمپنیز ہیں وہ بڑے عرصے سے یہ کمپلینز کر رہی تھیں مودی جی کی گورنمنٹ کو کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ یہاں پہ نہیں ہے, کیونکہ ہر سال بنگلورو میں فلڈز آ رہے ہیں, ان پلانڈ اربن انفراسٹرکچر ہے, اور یہ سچویشن دن بدن بری چلتی جا رہی ہے کیونکہ کلائمیٹ چینج بھی آ رہی ہے. یہاں پہ گورنمنٹ نے ربر کی جو ڈنگی فیریز ہوتی ہیں ان سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی, اور جو ایئرپورٹ میں جو لوگ پھنسے تھے ان کو ٹریکٹروں پہ بٹھا کے پھر وہاں سے نکالا. تو جو آئی ٹی سیکٹر کے لوگ تھے انہوں نے اپنے امپلائیز کو کہا کہ گھر سے کام کریں, اور بہت سارے سکولز اور کالجز جو تھے آج بنگلورو کے اندر بند تھے, لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ کافی دن تک ایسے ہی مسائل چلیں گے بنگلورو کے اندر بھی جو ہیں. اے ایف پی کی آج نیوز ہے, اور اس کے مطابق جی ٹی ٹی پی نے آج پھر سے جو پاکستان آرمی ہے اس کے اوپر حملے کیے ہیں, لیکن ٹی ٹی پی کا کہنا ہے کہ اب دو ورژنز ہیں. ٹی ٹی پی کا کہنا ہے کہ جو ہماری سیز فائر کی جو کنڈیشنز تھیں پاکستان ملٹری کے ساتھ, پاکستان ملٹری اب اس کو آنر نہیں کر رہی ہے. پاکستان ملٹری کہتی ہے کہ نہیں, یہ ہمارے لوگوں کے اوپر انہوں نے ٹی ٹی پی نے پھر سے اٹیکس شروع کر دیے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے تھے. ان کے بیچ میں آج جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں 4 فائٹرز اور 5 سولجرز جو ہیں ان کی بویا کا جو علاقہ ہے نارتھ وزیرستان میں وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق انہوں نے ایک ہائیڈ آؤٹ تھا افغانستان کے ساتھ, وہ بارڈر کرتا تھا, ان کو ایک ٹپ ملی تھی انٹیلیجنس کی, تو اس پہ انہوں نے اس کے اوپر دھاوا بولا, تو وہاں پہ جو ملٹنٹس تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ٹروپس جو ہیں ان کا جو ہے انہوں نے 6 اور ڈسٹرکٹس پہ بھی حملے کیے تھے. ٹی ٹی پی کا کہنا ہے کہ پاکستان ملٹری جو ہے وہ اس نے ہمارے ساتھ پرومس کیا تھا کہ جو ہم جو جون میں ہم نے جو ٹریٹی سائن کیا تھا کہ سیز فائر انڈیفینیٹلی چلتا رہے گا, لیکن اب یہ جو ہے یہ ٹارگیٹڈ کلنگز انہوں نے شروع کر دی ہیں. پاکستان ملٹری کہتی ہے کہ انہوں نے ٹارگیٹڈ کلنگز جو ہے پاکستان ملٹری کے آفیشلس کی ہے, تو ایز اے ریزلٹ ان کے ساتھ جو ہے نہیں چلا جا سکتا زیادہ دیر. اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے جی اس نے پی ٹی آئی کے جو لا میکرز ہیں ان کا جو ریزگنیشن, جو نیشنل اسمبلی کے اس وقت عمران خان صاحب کے زمانے میں جو سپیکر تھے قاسم خان سوری صاحب, انہوں نے جو لیے تھے ریزگنیشن, اس کو ان کانسٹیٹیوشنل آج کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ جس وقت انہوں نے 15 اپریل کو قاسم خان سوری نے سارے ریزگنیشنز جو ہیں 123 پی ٹی آئی کے لا میکرز کا لیا تھا, اس کو چیلنج کیا تھا جو آئے تھے نئے نیشنل اسمبلی کے سپیکر جو ابھی بھی ہیں راجہ پرویز اشرف, اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ سے جان بوجھ کے لیے گئے ہیں یا یہ اپنی مرضی سے دیے ہیں, کیونکہ یہ سورسز نے کہا تھا کہ سب کی ہینڈ رائٹنگ ایک جیسی ہے اور یہ ہینڈ ریٹن بھی نہیں ہے, یہ ٹائپڈ ہیں کچھ کچھ, और इनके जो सिग्नेचर्स हैं वो भी नहीं मिलते हैं, और ये सारे के सारे पीटीआई के लेटर हेड्स के ऊपर हैं। असेंबली रोल के अंदर जो इनके सिग्नेचर्स हैं वो डिफरेंट हैं और ये डिफरेंट हैं, तो इनकी जांच की जाए। तो आज जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने इनकी प्ली जो है पीटीआई के काउंसिल फैसल चौधरी की रिजेक्ट की है, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जी आपने जो एनमैस ये जो किए थे रेजिग्नेशन किए थे इनको हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया गया था पीटीआई की तरफ से। तो ये एक बड़ा धचका लग सकता है। इमरान खान साहब जो हैं आज जनाब रैली कर रहे थे पिशावर के अंदर, और पिशावर के अंदर इन्होंने एक दफा फिर से कहा है कि मेरी बातें जो हैं तरोड़ मरोड़ के पेश की जा रही हैं, हम मिलिट्री को जो है वो फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, हम उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। और उन्होंने फिर वो क्लिप्स भी दिखाए, और अब ये जो पिशावर में रैली चल रही थी उन्होंने कहा कि ये देखें ये जो पिछले जो गवर्नमेंट के लीडर्स थे ये किस तरह की क्रिटिसिज्म करते थे, हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं ताकि हमारी मिलिट्री के अंदर अच्छाई आए। पीएमएलएन को वो कहते हैं जी मैं बता देना चाहता हूं कि तुम इंस्टीट्यूशंस के बीच में हमारी लड़ाई कराना चाहते हो जो कि नहीं हो सकेगी, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तुम लोगों से नहीं होता है, तो इसलिए तुम लोग मुझे जो है ये डेंजरस कॉन्स्पिरेसीज के अंडर मुझे टेररिस्ट जो है डिक्लेयर करने के लिए तैयार खड़े हुए हो कोर्ट के अंदर, और मिलिट्री और जुडिशरी जो है उसके अंदर बेहतरी जब तक नहीं आएगी तो मुल्क कैसे चलेगा, तो तुम लोग जो मर्जी साजिशें मेरे खिलाफ कर लो, लोग जो हैं पॉलिटिकली अवेयर हैं तो वो इन लोगों इन चीजों को नहीं मानेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ और जरदारी को मैंने सिर्फ इतनी बात की थी कि इनको मिलिट्री चीफ जो है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, एक जो कमीशन है बिल्कुल ही थर्ड पार्टी जो कि यानी नॉन पार्टिजन है उसको ये चीज जो है वो देखनी चाहिए, या कि इसको जो है प्रेसिडेंट को देखना चाहिए, उसके पास समरी जानी चाहिए, तो इसके अंदर क्या बुराई है। और फैसलाबाद के अंदर उन्होंने कहा जी कि मैंने तो सिर्फ इतनी बात की है कि जो आर्मी चीफ है वो मेरिट की बेस पे आना चाहिए, तो इसमें क्या गलत बात है, सारी दुनिया के ऊपर जो छोटी छोटी कंपनीज जो हैं वो भी मेरिट के बेस पे लोगों को हायर करते हैं, तो मिलिट्री के अंदर अगर मैंने कह दिया कि अगर आप एक दूसरे को सुपरसीड ना करें और एक जिसकी बारी है उसके ऊपर किसी दूसरे को ला के ना मुसलत कर दें तो उसमें क्या बुराई है, मेरिट के बेस पे जो है यहां पर होने चाहिए। तो वो कहते हैं जी कि आप मेरे लफ्जों को तोड़ तोड़ के पेश कर रहे हैं ताकि जो है ये मुझे हमेशा के लिए वो कर दें, निकाल दें पॉलिटिक्स में से, तो विच इज नॉट रियली राइट। आईएसपीआर जो है उसकी आज एक प्रेस रिलीज आई है, और उसके मुताबिक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल बाजवा उनकी आज मुलाकातें जो हैं थ्री मेंबर कांग्रेशनल जो डेलीगेशन यूएसए से आया है उसके साथ जीएचक्यू रावलपिंडी में हुई है। चीफ जो है उन्होंने यूएसए का बहुत थैंक यू किया जो फ्लड्स के बीच में उनकी असिस्टेंस है, और उन्होंने कहा कि हमारे बीच में ये दोस्ती ऐसे ही चलती रहेगी और हमारे हम लोग जो हैं ये रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन का काम फ्लड विक्टिम्स के लिए करते रहेंगे। ये जो डेलीगेशन थी इसके अंदर शीला जैक्सन ली, टॉमस सूजी, अलेक्जेंडर ग्रीन जो थे, और इन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत डेवस्टेटिंग फ्लड्स आए हुए हैं, तो यूएस ने कहा कि इस आवर ऑफ नीड में हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं और हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट एक जैसे हैं। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है फिर मतलब एक कदे प्यार है तो कदे नहीं है, कदे है तो नहीं है, व्हाट इज दिस अंकल सैम, कोई एक पॉलिसी बनाओ तुम, थानू भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए। अच्छा जी, वो कहते हैं जी रीजनल सिक्योरिटी के अंदर पाकिस्तान ने बड़ा ही जालिम किस्म का काम किया है और बड़ा आपने अजीम काम किया है इलाके की पीस के लिए, ये पाकिस्तान को आज कह रहे थे वो, तो थोड़े दिनों के बाद कहेंगे हाँ हाँ पाकिस्तान टेररिस्ट है, पाएने की चल रहे मजाक है कोई तो आज जी बड़ी प्यार की बातें की हैं। बहरहाल जी ये हुआ, आज जनाब 6 सितंबर था, और आपको पता ही है हर 6 सितंबर को पाकिस्तान डिफेंस डे मनाता है, और डिफेंस डे इसलिए मनाता है कि 1965 की वॉर जो हुई थी जिसमें कि जो हमारे सिपाही थे जिन्होंने कि अपनी जानें दी थी, तो उनको जो है आज उन फॉलन हीरोज को याद किया जाता है आज के दिन 6 सितंबर को, और जीएचक्यू के अंदर बड़ी तकरीबात होती हैं। लेकिन आज बहुत ही क्वाइटली जो पीएफके एकेडमी असकर खान जो पीएफ एकेडमी जो थी उस उन्होंने जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया यहां पे जो कायद आजम का मसोलियम है कराची में उसमें क्वाइटली, और मिलिट्री ने कहा कि जो भी कोई हमारे खिलाफ आंख उठा के हमारे खिलाफ देखेगा तो हमें हमेशा तैयार पाएगा, और तो 1965 की इस वॉर को आज बहुत ही क्वाइटली जो है सिर्फ सेलिब्रेट किया गया फ्लड्स के रहते हुए। अच्छा जनाब, ये जो फ्लड्स वगैरह चल रहे हैं इसमें डेंगू का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और जो नेशनल जो डिजीज मैनेजमेंट है वो अब बता रहे हैं कि सिंध और पंजाब में डेंगू बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है, और इसके अंदर वो अथॉरिटीज कह रही हैं 97 केसेस सिंध में, 85 जो हैं पंजाब में पिछले 24 आवर्स में आए हैं। इसके अलावा जो हैं उससे पहले जो हैं सिंध में के जो एरिया है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें 27, ईस्ट में 26, साउथ में 17 और वेस्ट के में 9, किमाड़ी में 7, मलीर में 4, कुरंगी में 2 और इसी तरह जो रावलपिंडी है उसमें यानी कि पंजाब अगर आप आए तो रावलपिंडी में 46, लाहौर में 31, बहावलपुर में 2 और 310 पेशेंट्स जो हैं उनका इस वक्त ट्रीटमेंट भी चल रहा है डेंगू का पंजाब के हॉस्पिटल्स में। तो इस तरह ये जो चीज़ है ये भी फैलती चली जा रही है। और जनाब आज राकेश रोशन साहब जो हैं उन्होंने अपनी 73rd बर्थडे मनाई है। बड़े जबरदस्त चॉकलेट स्टार होते थे जो हैं अपनी जवानी में और बड़ी जबरदस्त फिल्में कहो ना प्यार है 2000 में बनाई थी, कोई मिल गया 2003 में और भी इसके अलावा क्रेश और बहुत सारी फिल्में उन्होंने बनाई थी। तो अपनी बर्थडे पे उन्होंने लोगों ने पूछा कि आप क्या स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं राकेश रोशन साहब, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो बॉलीवुड के फिल्म स्टार फिल्म मेकर्स हैं वो सही तरह से फिल्में बना नहीं रहे हैं, मॉडर्न सिनेमा के नाम पे इंतहाई थकी हुई फिल्में बना रहे हैं। वो जो उनको और उनके दोस्तों को पसंद है जो कि सिर्फ 1% ऑफ द पॉपुलेशन को अपील करती है, बाकी पॉपुलेशन को नहीं करती है, इसीलिए इनकी फिल्में पै दर पै जो है वो फेल होती जा रही हैं और फिर ये सॉन्ग्स जो हैं वो भी खत्म करते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं आपको अगर याद हो कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की जो फिल्में होती थी ज्यादातर वो फिल्में सुपर डुपर हिट इसीलिए होती थी, उनके सॉन्ग्स भी जबरदस्त होते थे और स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी होती थी। तो अब ये जो है ये सॉन्ग से हटते चले जा रहे हैं, तो कैसे? तो इन्होंने बड़ी आज जो है एडवाइज किया है बॉलीवुड को कि तुम जैसे साउथ में फिल्में बन रही हैं पुष्पा एंड आरआरआर जिसमें टॉप क्लास गाने हैं एंड बिल्कुल जो स्टोरीज हैं उनके रूट्स के साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं, तो वैसा ही बॉलीवुड को फिल्में बनानी पड़ेंगी। यानी रियलिटी थोड़ी ये स्लम डॉग मिलियनेयर दी और तुसी करण जौहर साहब मैनहैटन दे विच सारी फिल्मां बना रहे हो, ते भैन फिर बाकी दी बेचारी जिहड़ी पॉपुलेशन है वाकई वो कैसे उसके साथ जो है वो करेगी, हैं जी? तो बात इनकी सही है, ऐसे उन्होंने कहा। और जनाब एक सोनी टीवी के ऊपर एक प्रोमो आया है जो कि अपकमिंग एपिसोड का है, कौन बनेगा करोड़पति 14 का जो सेशन है उसका, उसमें जो बिग बी हैं उनको देखा जा रहा है कि उन्होंने कृष्णा दास जो हैं उनको जो है वो इनवाइट किया है। तो कृष्णा दास कहते हैं मुझे लगता है मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती है, तो अमिताभ बच्चन उनसे पूछ रहे हैं भाई क्यों नहीं करती हैं, कहते हैं इसलिए कि मैं जब भी आपकी फिल्म देखने लगता हूं तो वो कहते हैं क्या ये तुम फिल्म देख रहे हो फालतू की, बंद करो ये। तो उस पे अमिताभ बच्चन साहब जो हैं वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े गमगीन हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा पहले हमको ये बात हजम कर लेने दीजिए कि हम फालतू पिक्चर बनाते हैं। तो उस पे जो है वो हंस रहा है और वो उसका जवाब नहीं दिया है। तो ये लोग जो है अब इसका एपिसोड का बड़ा इंतजार कर रहे हैं। 9 सितंबर को अमिताभ बच्चन की जो आयान मुखर्जी ने फिल्म बनाई है ब्रह्मास्त्रा उसके अंदर ये अब देखे जाएंगे और भी कुछ इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं लाइंड अप हैं इवन एट दिस एज। गल्फ अरब कंट्रीज जो हैं उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहा है कि तुम बहुत ज्यादा ऑफेंसिव कंटेंट जो है अरब कंट्रीज के लिए पेश कर रहे हो, क्योंकि जो कंटेंट यूरोप के लिए है वो अरब कंट्रीज के लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ये प्रोग्राम्स इस्लामिक और सोसाइटल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स जो हैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। नेटफ्लिक्स की जो कि बेस्ड है कैलिफोर्निया में लॉस गेटोस में, अभी तक उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया है इसको, लेकिन बेसिकली ये जो एतराज इनके ऊपर आया है कि ये जो शोज गेज और लेस्बियंस के ऊपर पेश कर रहे हैं उसके ऊपर इनका एतराज था। इससे पहले भी जो डिज्नी ने एक फिल्म लाई थी लाइट ईयर उसमें भी जो लेस्बियन कैरेक्टर्स किसिंग करते हुए दिखाए गए थे उसके ऊपर अरब कंट्रीज ने बहुत ज्यादा एतराज किया था और इनको कहा था कि भई आप ये स्ट्रीमिंग हटाएं। तो अब गल्फ कंट्रीज ने कहा है इसको नेटफ्लिक्स को कि ये सारा जो कंटेंट है ये हमारे रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इस्लामिक वैल्यूज को भी करता है, तो इसको फौरन हटाएं। तो अब देखेंगे इसको क्या करेंगे। और जनाब आज पीसीबी ने यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है कि विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान जो है उनका, जिनका कल हमने आपको बताया था कि एमआरआई चल रहा है क्योंकि उनको नी इंजरी आ गई थी इंडिया पाकिस्तान के मैच के बीच में जो एशिया कप हो रहा है 2022 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, तो उसके लिए कहा है कि इनको अब इजाजत मिल गई है कल का जो अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में जो मैच है उसमें ये खेल सकेंगे। लेकिन आज जो ट्रेनिंग कर रही थी टीम उसके साथ ये ट्रेनिंग नहीं की है, इनको कह रहे हैं जी कि मेडिकल स्टाफ हमारा कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा है और हम देख रहे हैं कि ये इनकी जो है वो जो इंजरी आई है वो कैसी है। तो आपको पता ही है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में उन्होंने 71 रन बनाए थे और उसकी वजह से ही पाकिस्तान की हालत जो है थोड़ी कंसोलिडेट की थी और वो इंडिया से जीता था। तो बहरहाल ये बड़े क्रूशल हैं लेकिन देखेंगे अब क्या होता है कल। ऐसे है। और जनाब जो एक बहुत बड़ा और भी मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, उसको तो हम कवर ही नहीं कर रहे हैं। एशिया कप में हम ऐसे पागल हुए हुए हैं। बहरहाल जी, आज फर्स्ट ओडीआई था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, और ऑस्ट्रेलिया ने दो विकेट्स जो हैं उनसे जीत लिया है, और ये इन्होंने 5 ओवर्स पहले ही अचीव कर लिया था। न्यूजीलैंड ने 232/9 बनाए थे इन 50 ओवर्स में, और ऑस्ट्रेलिया ने 233 बनाए फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह से जीता। इसके अलावा जनाब, जो यूएसए के बहुत ही यंग 24-year-old फ्रांसिस टाइफो हैं, उन्होंने जनाब किसको हराया है? कैन यू इमेजिन, ही बीट एंड एंडेड राफेल नडाल्स 22-match ग्रैंड स्लैम विनिंग स्ट्रीक। और ये जो 24 साल का लड़का है, ही हैज रीच्ड ऑलरेडी यूएस ओपन के जो क्वार्टर फाइनल्स हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। और आपको सुनकर हैरत होगी कि इस लड़के के जो पेरेंट्स हैं वो सिरा लियोन से अफ्रीका से आए थे ड्यूरिंग द सिविल वॉर इन 1990s, और ये मैरीलैंड में रहता था, और इसके बाप ने जो है टेनिस कोर्ट के ऊपर वहां पे जो नियर बाय था उसमें नौकरी ली थी, और उसके बाद इस बच्चे ने वहां पे प्रैक्टिस शुरू की थी। एंड टुडे ही हैज बीटन नन अदर देन राफेल नडाल, और सिर्फ 24 साल का ये बच्चा है।
बिग डील।
तो आज इसको ये कहता कि आई कुडंट बिलीव माई सेल्फ। एंड जनाब, एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज बिफोर द यू नो स्पेशल रिपोर्ट जो हम सुनाएंगे बाद में, श्रीलंका बीट इंडिया बाय 6 विकेट्स इन एशिया कप का जो ये सुपर फोर का जो मैच था, इसके अंदर श्रीलंका जो था 174 का टारगेट चेस कर रहा था, और उसने करते हुए अभी एक बॉल जो थी वो रहती थी, और इसमें जो कुसल मेंडिस जो हैं वो टॉप स्कोरर थे 57 के साथ, और ओपनिंग पार्टनरशिप जो थी पाथम निसंका और दसुन शरंका, उन्होंने भी 52/33 नॉट आउट बनाए थे रिस्पेक्टिवली। और इंडिया की तरफ से चाहल जो है उसने 3 विकेट्स ली थी वो 34, अश्विन ने 1 ली थी, और इंडिया को जो है इनवाइट किया गया था पहले बैटिंग के लिए, और इंडिया ने 173/8 बनाए थे 20 ओवर्स में। जो रोहित शर्मा थे वो टॉप स्कोरर रहे विद 72 runs off 41 balls। सूर्य कुमार यादव जो हैं उन्होंने 34 बनाए, और जो श्रीलंका की तरफ से दिलशान मधुशंका थे उन्होंने 3 विकेट्स ली फॉर 24, एंड चमिका करुणा रत्ना जो है उन्होंने 2 विकेट्स ली फॉर 27, एंड दसुन शनाका ने 2/26। तो जनाब ये आज जो है बड़े ही एक्साइटिंग जो मैच था ये पहुंचा अपने एंड की तरफ, एंड एज अ रिजल्ट अब तो मेरा नहीं ख्याल है इंडिया आगे प्रोसीड कर सकेगा। बहरहाल अब उनका कल मैच जो है, नहीं थर्सडे को है शायद उनका मैच अफगानिस्तान,
कल
अफगानिस्तान के साथ है,
पाकिस्तान, नहीं कल पाकिस्तान अफगानिस्तान,
अच्छा कल पाकिस्तान अफगानिस्तान का, और थर्सडे को फिर इंडिया अफगानिस्तान का है। तो ऐसे है। एंड जनाब थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद हम सुनाते हैं आपको इस स्पेशल रिपोर्ट, या हम चलें उसके बाद हम कर लेंगे
अगर आप चाहें तो, अभी हो सकता है, या वरना हमारे टॉप ऑफ द आवर का टाइम हो गया तो हम टॉप ऑफ द आवर लेके उसके बाद सुनाएंगे।
हाँ, टॉप ऑफ द आवर ले लेते
हैं।
अच्छा चलो फिर सुना लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं,
कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके पर आप
ठीक है, फिर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके जनाब, वाशिंगटन पोस्ट की ये जबरदस्त जो आज रिपोर्ट है, जिसका कि मैंने आपको बताया था कि लग रहा है कि अमेरिका के अंदर भी पाकिस्तान का असर आना शुरू हो गया है, तो ये आज बहुत ही जो है खतरे में नाक न्यूज है। वो खतरे में नाक न्यूज ये है कि जो पेंटागन के कुछ जो फॉर्मर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बड़ा वार्न किया है कि यूएस की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिविजन्स आती जा रही हैं आर्म्ड फोर्सेस के प्रेशर आने की वजह से। एक इतनी बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी जो कि कहती थी आर्म्ड फोर्सेस को कि तुम हमारे अंडर हो, अंडर रहोगे, अब ये न्यूज आ रही है कि शायद अनवांटेड प्रेशर जो है आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से पॉलिटिकल एनिना में एंटर होना शुरू हो गया है, और वो कह रहे हैं कि ये सिविल पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है ये बहुत ज्यादा जो है ये खराब करेगी आने वाले दिनों में। आपको पता ही है कि ट्रंप साहब जब भी आते थे उनके साथ जो है वो नजर आते थे मिलिट्री के अफसर, और उसके बाद जो है वो बड़े उनके ऊपर एतराज भी आते थे, लेकिन अब जी ये है। इसमें उन्होंने बताया, वॉशिंगटन पोस्ट कह रही है कि 8 ex-defense secretary हैं, 5 ex-joint chiefs chairman हैं, और ये सारे जो हैं इन्होंने एक स्टेटमेंट साइन की थी 16 best practices ऑफ सिविल मिलिट्री रिलेशंस। ये सारे जो हैं इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है, और इन्होंने कहा है कि अंडर ट्रंप साहब जो है पेंटागन पॉलिटिकल जो है वो उसका यानी फेलियर्स का शिकार होना शुरू हो गया था, क्योंकि ट्रंप साहब जो हैं वो अपनी बात जो है वो मिलिट्री वालों के ऊपर करते थे, मिलिट्री वाले उनको कुछ चीजों के लिए प्रेशराइज करते थे। तो ये एक्सेप्शनल चैलेंज जो है ये सिविल मिलिट्री एनवायरमेंट के अंदर ये अमरीका में मुश्किल होता चला जा रहा है। वो कहते हैं जी कि पोलिटिकल और मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो अब एक ऐसा एनवायरमेंट फेस करते हैं जिसमें कि डिविसिवनेस और पोलराइजेशन जो है फॉर द फर्स्ट टाइम आ गई है फॉर ओवर अ सेंचुरी, जो कि ये नहीं थी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पावर्स थी वो बिल्कुल पीसफुल तरीके से ट्रांसफर की जाती थी, लेकिन उसके बाद जो है बहुत ज्यादा इसमें चेंज आ गई। ये एक पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जो कि पब्लिश की गई थी डिफेंस फोकस्ड वॉर ऑन रॉक्स वेबसाइट, उसके ऊपर आया था। और जो अगर आप जिशान अगर आप दिखाएं ट्रंप साहब के साथ जो मिलिट्री ऑफिशियल्स होते थे उनकी तस्वीर अगर आप दिखाएं प्लीज, ये जो होते थे सेक्रेटरी मार्क एस्पर और जनरल मार्क माइली जो होते थे ट्रंप साहब के साथ, जो कि अभी भी जो हैं चेयरमैन ऑफ चीफ जॉइंट्स ऑफ स्टाफ हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये खास तौर पे उस वक्त जिस वक्त जॉर्ज फ्लॉयड का मसला आया तो ये सारे जो हैं ट्रंप साहब के साथ इनके मिलिट्री ऑफिशियल्स निकल के व्हाइट हाउस के सामने आए, जिसने ये चीज शो की कि अब सिविलियन गवर्नमेंट इनको रन नहीं कर रही है, अब इनको मिलिट्री के ऑफिशियल्स कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें सिविलियन गवर्नमेंट के साथ होती हैं। तो ये जब सिविलियन गवर्नमेंट को संभालने की होती हैं, जब पुलिस के संभालने की आती हैं, तो ट्रंप साहब के साथ ये जो थे मिलिट्री के ऑफिशियल ये क्यों आते थे? इसका मतलब है कि वो उनको प्रेशराइज कर रहे थे चीजों के लिए और उनके प्रेशर में आके ये फिर सारा कुछ करते थे। उनका कहना है जी कि ये जिस वक्त सामने आते थे सारे तो लोगों को ज्यादातर यही लगता था कि फोटो अपॉर्चुनिटीज के लिए आते हैं, लेकिन जो ट्रबल थी उससे ज्यादा डीप थी, लगता यही था कि ये अनवांटेड प्रेशर जो था आर्म्ड फोर्सेस वाले ये यूएस पॉलिटिक्स पे डाल रहे थे उस वक्त, और उसके रहते हुए ट्रंप साहब जो हैं वो कभी कुछ शायद एलिजली कुछ फैसले करते थे। वो कहते हैं जी कि ये जो मिलिट्री फोर्स्ड ये जो हैं चीजें उसकी एक एग्जांपल हम ये कर सकते हैं कि जिस वक्त ट्रंप साहब ने कहा अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को कि विदड्रॉ किया जाए, उस वक्त मिलिट्री के बहुत सारे लोग जो थे वो इस हैप हैजर्ड विदड्रॉल के हक में नहीं थे, और सीनियर पेंटागन जो लीडर्स थे उन्होंने भी ट्रंप साहब के साथ ये एग्री नहीं किया था, लेकिन ट्रंप साहब वॉज बेंट अपॉन दिस कि नहीं हर हाल में हमको करना है। तो उसकी वजह से जो है वेज आना शुरू हो गई थी इनके बीच में। उसके अलावा वो कहते हैं जी कि ट्रंप साहब के जब जिस वक्त ये सपोर्टर्स ने जो है अटैक किया था, जिस वक्त जो बाइडन साहब हैं वो कर रहे थे अपनी